नमस्कार भारत, जनवरी की पहली तारीख, दिन इतवार। तुर्की के इस्तांबुल में नाइट क्लब पर हमला, कई की मौत। नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया भाषण, कई नई योजनाओं का ऐलान।
घर बनाने के लिए 9 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 4% की छूट और 12 लाख रुपए।
कांग्रेस ने कहा कुछ नया नहीं, विशेषज्ञ बोले नोटबंदी पर क्यों रहे चुप मोदी। सुनेंगे आम लोगों के विचार और पार्टी में अखिलेश की वापसी के बाद सवाल ये कि सपा का असली नेता अब कौन।
यथार्थ आज ये है, मुलायम जी ने देख लिया जो समाजवादी पार्टी थी उसके अनडिस्प्यूटेड नेता, चाहे वो संगठन और सत्ता दोनों अखिलेश के पास है।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। नए साल की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में कई ऐलान किए हैं। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि देश ने कंधे से कंधा मिलाकर नोटबंदी के उनके फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी ने देश के बेईमानों को चोट पहुंचाई है। अपने इसी संबोधन में प्रधानमंत्री ने गरीबों को घर बनाने में कई रियायतें देने की भी घोषणा की और गर्भवती महिलाओं के लिए भी एक देशव्यापी योजना का ऐलान किया। तुर्की के इस्तांबुल में नए साल के जश्न के दौरान एक नाइट क्लब में फायरिंग हुई है जिसमें 35 लोगों की मौत हो गई। तुर्की के समाचार चैनल एनटीवी ने ये खबर दी। खबरों के मुताबिक हमलावर सेंटा की ड्रेस पहनकर रेना नाइट क्लब में दाखिल हुआ और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने देश में बढ़ते राष्ट्रवाद पर चिंता जाहिर की है और इसे फ्रांस के लिए खतरा बताया। उन्होंने नए साल के मौके पर फ्रांस की जनता को संबोधित करते हुए ऐसा कहा। फ्रांस में अप्रैल में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, ओलांद तब अपना पद छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि पूरा यूरोप ही चरमपंथ से जूझ रहा है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में ओलांद की सोशलिस्ट पार्टी काफी पिछड़ रही है और दक्षिणपंथी नेशनल फ्रंट की नेता मरीन ले पेन और रिपब्लिकन पार्टी के फ्रांसवा फियां आगे चल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सीरिया में लड़ाई रोकने के रूस और तुर्की के प्रयासों का स्वागत किया है और कहा है कि वो युद्धग्रस्त सीरिया को संकट से उबारने के लिए वहां राजनीतिक प्रक्रिया का समर्थन करती है। अगले महीने कजाकिस्तान में सीरियाई सरकार और विद्रोही गुटों के बीच शांति समझौते पर बात शुरू होगी। रूस, ईरान और तुर्की इस बातचीत का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा परिषद के ही कुछ सदस्य देशों ने सीरिया में युद्ध विराम की स्वतंत्र निगरानी की बात कही और इस समझौते पर सवाल भी उठाए हैं, जिस पर संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत विताली चुरकिन ने कहा,
пожалуйста, помогайте. Если не хотите помочь или не можете помочь, ну, пожалуйста, тогда
туман. सीरिया में शांति बहाली में हमारी मदद करें और अगर हमारी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम स्थिति को जटिल न बनाएं। बार बार पुरानी बातों को मत दोहराएं। हमें गंभीरता पूर्वक काम करने दें ताकि 2017 में हम सीरिया समस्या का हल खोज लें। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस दिशा में काम करे और सीरिया के लोगों की भलाई के बारे में सोचे तो हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ये थे संयुक्त राष्ट्र में रूसी राजदूत विताली चुरकिन के शब्द। ताइवान के राष्ट्रपति साई यिंग वेन ने कहा है कि चीन उसको धमकी देने और डराने के अपने पुराने तौर तरीकों की तरफ लौट रहा है। वो नए साल के मौके पर देश के लोगों को संबोधित कर रहे थे। साई यिंग वेन ने कहा, इस क्षेत्र में कुछ चीज़ें हो रही हैं जो तनाव पैदा करने वाली हैं, हालांकि हम इनसे शांत होकर निपटेंगे। मुझे उम्मीद है कि चीन ने पिछले दिनों जो भी कहा और किया वो हमारे प्रति उनकी किसी नीति का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन्हें बताना चाहेंगे कि उनकी इन हरकतों से क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। ताइवानी राष्ट्रपति के ये शब्द। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में ताइवान और चीन के संबंध इस बात पर निर्भर करेंगे कि चीन ताइवान से किस तरह से पेश आता है। इराक की राजधानी बगदाद में अधिकारियों के मुताबिक एक बाजार में 2 बम धमाके हुए हैं जिनमें कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई है और 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से कहा जा रहा है कि एक धमाका आत्मघाती हमलावर ने किया और दूसरा धमाका IED से किया गया। अभी तक किसी गुट ने इन धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, फैसल महमूद अली से। बीबीसी रेडियो के सभी सुनने वालों को साल 2017 की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत एक बुरी खबर से कर रहे हैं। अभी अभी खबर आ रही है कि तुर्की के इस्तांबुल में एक नाइट क्लब पर हमला हो गया है। प्रभात पांडे हैं मेरे साथ स्टूडियो में, कई लोग मारे गए हैं। प्रभात बताएं क्या है आपके पास।
जी फैसल, ये नए साल का जश्न चल रहा था। इस्तांबुल का एक रेना नाइट क्लब है, वहाँ पे बहुत तुर्की के बहुत ही अमीर लोगों का आना जाना है, तो वहाँ पर ये नए साल का जश्न चल रहा था और इस वजह से वहाँ पे सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। उस दौरान खबरों के मुताबिक ये हमलावर जो है वो सेंटा की ड्रेस पहनकर नाइट क्लब में दाखिल हुआ और उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से वहाँ 35 लोगों की मौत हो गई है। इस्तांबुल के गवर्नर वासिफ शाहीन ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि दुर्भाग्यवश हमारे कम से कम 35 नागरिकों की मौत हो गई है, इनमें एक पुलिस अधिकारी भी है, 40 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गवर्नर ने इस गोलीबारी को चरमपंथी हमला बताया है। जी फैसल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस्तांबुल कई दिनों से आतंकवादी हमले की आशंका के मद्देनज़र हाई अलर्ट पर है और करीब 17,000 पुलिसकर्मी शहर की चौकसी में तैनात हैं। जो हमले के बाद टीवी फुटेज आ रहे हैं उनमें साफ देखा जा सकता है कि पुलिस की गई गाड़ियां और एम्बुलेंस जो है वो घटना स्थल पर पहुंच रही हैं और घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आप इससे जुड़ी खबरें आकर bbchindi.com पर पढ़ सकते हैं। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से हवा तेज बह रही है, ठंड जैसे देह को चुपसी रही है। ठीक वैसे ही जैसे कहा जा रहा है कि करेंसी नोटों पर लगे बैन ने लोगों और अर्थव्यवस्था को बिलबिलाने वाली चुभन दी। उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से मुश्किलों के ख़त्म होने के लिए जिस 50 दिन की मोहलत मांगी थी उसके खात्मे पर वो कुछ ऐसा कहेंगे जिससे माहौल में कुछ गर्माहट से आएगी। मोदी ने कल शाम अपनी बात लोगों के सामने रखी। सुने वात्सल्य राय से कि क्या क्या कहा उन्होंने।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत नोटबंदी के मुद्दे से ही की। उन्होंने नोटबंदी की तुलना शुद्धि यज्ञ से करते हुए कहा,
हिंदुस्तान ने जो करके दिखाया है ऐसा विश्व में तुलना करने के लिए कोई उदाहरण नहीं है। बीते कुछ वर्षों में 1,000 और 500 के नोट सामान्य प्रचलन में कम और पैरेलल इकोनॉमी में ज्यादा चल रहे थे, काला बाजारी बढ़ा रहे थे, देश के गरीब से उसका अधिकार छीन रहे थे।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में घोषणाओं का पिटारा भी खोला। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 नई योजनाओं का ऐलान किया।
2017 में घर बनाने के लिए 9 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 4% की छूट और 12 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी।
उन्होंने किसानों, महिलाओं और व्यापारियों के लिए भी राहत योजनाओं का ऐलान किया।
जिन किसानों ने खरीफ और रबी की बुवाई के लिए कर्ज लिया था उस कर्ज के 60 दिन का ब्याज सरकार वहन करेगी। अगले 3 महीने में 3 करोड़ किसान क्रेडिट कार्डों को रुपे कार्ड में बदला जाएगा। अब देश के सभी 650 से ज्यादा जिलों में सरकार गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये की आर्थिक मदद करेगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.5 लाख रुपए तक जमा राशि पर ब्याज दर 8% करने और छोटे कारोबारियों की क्रेडिट गारंटी बढ़ाने की घोषणा भी की। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं की झड़ी को ऐसी फुलझड़ी बताया जिसकी चमक जल्दी खत्म हो जाती है। कांग्रेस नेता मीम अफजल,
उन ऐलानात में कुछ ऐलानात ऐसे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। यूपीए सरकार 4,000 रुपए हर गर्भवती महिला का ऐलान किया था और बाद में उसको बढ़ाकर के 6,000 कर दिया गया था। घरों के लिए उन्होंने कहा है कि 4% और 3% जो है ब्याज दर जो है वो कम की जाएगी। ये भी पिछली सरकार कर चुकी है। प्रधानमंत्री की ये स्पीच इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने कि लोगों को बड़ी सख्त परेशानी हुई है।
कांग्रेस ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उन लोगों के लिए एक भी शब्द नहीं कहा जिनकी मौत कथित तौर पर नोटबंदी की वजह से हुई है।
रिपोर्ट सुना रहे थे वात्सल्य राय। और हमने मुल्क के कई हिस्सों में आम शहरियों से बात की और जानने की कोशिश की कि वो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर क्या कहना चाहते हैं।
आज मोदी जी का जो संबोधन था उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। परेशानी हम लोग का जारी ही रहेगा। घरेलू सुविधा जो होती है हम लोग को नहीं हो पा रही थी, जैसे घर का काम सब रुपया नकदी नहीं मिलने के कारण परेशानी हो रही थी, उसके लिए हम लोग बहुत परेशानी झेली। नंबर
बैंक में इससे पहले इतना पैसा नहीं आया था, जिससे ये निकलता है कि भाई उनका मकसद, मुख्य मकसद काला धन लेना नहीं था बल्कि बैंकों को कैश क्रंच से मुक्त करना था। निराशाजनक है।
जो भी नोट या पैसे को लेकर के बैंक से या ATM से जो भी प्रॉब्लम हो रहा था तो उस पे कुछ चर्चा नहीं हुआ।
लोगों को जो परेशानी हो रही है कि भाई जो लिमिट बनाई हुई है कि भाई 24,000 मिलेंगे या 10,000 मिलेंगे, उसके बारे में कुछ नहीं जिक्र किया। लोग बैंकों लाइनों में खड़े हैं, उनको राइट देने के लिए कोई बात नहीं करी। ATM उनको कोई वो नहीं।
PM के स्पीच पॉलिटिशियन के जैसा था, PM के जैसा नहीं था। मैंने सोचा था कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस को मुफ्त कर देंगे, तो ये दिशा पे जो देश जा रहा है वो थ्रो रिच नहीं होगा, लेकिन ये नहीं हुआ। लगता है कि सरकार प्रो रिच इतने हो गए हैं कि वो बैंक्स को भी डिक्टेट कर रहा है। वेरी डिसअपॉइंटेड।
ये थे अलग अलग आम जगहों से आम शहरियों की राय। प्रधानमंत्री के भाषण पर राय जानने के लिए हमने सुकांत शर्मा और अरविंद मोहर को दिल्ली स्टूडियो में बुलाया था। दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे सहयोगी इकबाल अहमद ने उन दोनों के साथ बैठकर मोदी के स्पीच पर नज़र रखी और फिर जानने की कोशिश की कि उनका क्या कहना है प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बारे में।
देखिए, एक सैद्धांतिक भाषण था और एक विचारधारा जैसा भाषण था। इस भाषण में ठोस बात कुछ नहीं थी। उन्होंने कुछ घोषणाएं की जो बजट जैसी घोषणाएं लग रही थी, उन घोषणाओं को वो जोड़ नहीं पाए अपने नोटबंदी के अभियान से। उन्होंने भ्रष्टाचार हटाने और काला धन दूर करने और जाली धन को दूर करने की बात की, लेकिन वो किस हद तक दूर कर पाए इस नोटबंदी के अभियान से, ये वो स्पष्ट नहीं कर पाए। और आगे वो इस विचारधारा की लड़ाई में, भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ जो लड़ाई वो जिसमें लोगों को शरीक करना चाहते हैं, उसमें उनकी क्या मतलब योजनाएं हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बताया।
अरविंद जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया।
50 दिन के बाद वो बोल रहे थे और जिस पे उन्होंने ये घोषणा कर रखी थी कि मुझे चौराहे पे फांसी पर लटका दीजिए अगर कोई, उसके
फांसी नहीं, उन्होंने कहा कि चौराहे पर आप जहां बोले मैं आ
जाऊंगा और जो सजा दीजिए वो मान लूंगा। तो अगर इस किस्म की बात पहले थी तो 50 दिन के बाद जब वो बोल रहे हैं तो कहीं रिव्यू होना चाहिए था और रिव्यू से लिंक कदमों की घोषणा होनी चाहिए थी कि जो गलतियां हुई उनको कैसे सुधारेंगे और अभी जो काला धन नहीं पकड़ में आया है उसको पकड़ने के लिए और क्या करेंगे। अब बजट 1 महीने बाद आना है तो उसके पहले ये अनाउंसमेंट क्यों किया गया? वो क्या इस काले धन की योजना से या शुद्धि यज्ञ से जुड़ा हुआ था या जो आगे चुनाव आने वाले हैं 4 राज्यों में उनसे जुड़ा हुआ था? लेकिन जो उम्मीद सब लोग कर रहे थे कि तो शायद रियल एस्टेट के बारे में, शेयर के बारे में, इन सब के बारे में।
एक आखिरी सवाल सुकांत जी, जब जिससे उम्मीद लोगों को थी वो नहीं था तो फिर था क्या? जैसा कि अरविंद जी ने कहा कि चुनावी भाषण था या बजट भाषण था, तो अब वित्त मंत्री क्या करेंगे फिर?
वित्त मंत्री का जो भाषण है वो ये जो सारे सवाल अब उठाए जा रहे हैं उनका जवाब देने की कोशिश करेगा। बहुत ही तकनीकी भाषण होगा, उनको बताना पड़ेगा कि कितना पैसा वापस आया, किस रूप में वापस आया, उसमें कितना काला है, कितना सफ़ेद है, कितना उससे फ़ायदा होगा अर्थव्यवस्था को, कितना टैक्स बढ़ेगा, कितना रेवेन्यू बढ़ेगा। जो मलाई मलाई है वो प्रधानमंत्री ने जो है वो लोगों को खिला दी और वित्त मंत्री जो है वो अब काफ़ी उबाऊ भाषण देने वाले हैं। वित्त मंत्री के लिए बिल्कुल छाछ छोड़ दी है।
वित्त मंत्री के लिए बिल्कुल छाछ छोड़ दी है। आखिरी टिप्पणी आप कर दें।
देखिए, बैंकों को कुछ कमाई हुई होगी या खुद कह रहे थे कि बैंकों के पास काफ़ी पैसा आ गया है और वो इंटरेस्ट में उस तरह की कई योजनाएं घोषित, फिर उनकी भरपाई कैसे सरकार करेगी ये कुछ बात बहुत साफ नहीं दिखाई दे रही है। सबको ब्रांड कर रहे हैं दूसरी तरफ अपने खेमे के अलावा, अधिकारियों को भी, बैंक के लोगों को भी, विपक्ष को भी। ये अपने आप में मुझे लगा कि ये अवसर शायद नहीं था। लोगों ने बहादुरी से ये झेला, ये तो उन्होंने कहा और ये शुद्धि यज्ञ है, ये सब चीज़ें कहते रहे, लेकिन जो बेईमान हैं उनको दंड देने की भी बात कही, लेकिन जो ईमानदार हैं उनके लिए कम से कम धन्यवाद का रिवार्ड भी उन्होंने अपनी ओर से नहीं दिया।
ये थे सुकांत शर्मा और अरविंद मोहन जो BBC के स्टूडियो में आए थे प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच पर अपना नज़रिया बताने के लिए।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव के निष्कासन को वापस ले लिया है। प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बताया कि निष्कासन वापसी का फैसला पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के निर्देश पर लिया गया है। हालांकि राम गोपाल यादव ने आज जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है उसमें कोई रद्दोबदल उन्होंने नहीं किया है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह से बात की और सबसे पहले पूछा कि वो पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं।
आज की तारीख में पूरी पार्टी अखिलेश के पास है, ये तो अखिलेश अपने पिताजी से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कॉल कर रहे हैं या किसी को छेड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि जो स्थिति आज की जो फैक्ट है, ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव, तो यथार्थ आज ये है, मुलायम जी ने देख लिया। आज की तारीख में जो समाजवादी पार्टी थी उसके अनडिस्प्यूटेड नेता, चाहे वो संगठन और सत्ता, दोनों अखिलेश के पास है। जो मौसम है, जो माहौल है, जो दिशाएं हैं, जो संकेत दे रही हैं, उसमें मैं पहले भी एक बात कह चुका था कि दो पार्टियों की लड़ाई थी, एक सूर्योदय की पार्टी है, एक सनसेट की पार्टी है। सनसेट की पार्टी हमेशा पराजित होती रही है। मैं आपको यूं कहूं कि अगर उत्तर प्रदेश में तीन चेहरे हैं, मायावती, नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव, ये वहाँ की सियासत में सिर्फ ये तीन चेहरों में ये तय होना है, बाकी कोई चेहरा ही नहीं है।
बाप बेटे के बीच में जो पहले खिंच गए हैं, चाचा भतीजे के बीच में जो अलगाव हो गया है, क्या उसमें आप देखते हैं कि कुछ एकजुटता आएगी?
ये तो ऐसे होता है जैसे देखिए, हर बाप सिर्फ एक हार को जीत से बड़ी समझता अपने लिए, वो है अपनी संतान का जीतना। हर बाप चाहता है कि उसका बेटा अगर वो रनर है तो बार बार वो प्रैक्टिस कराता है कि तुम उससे आगे निकल जा। ये अखिलेश को उन्होंने उतारा था कि आप लोकप्रिय बनिए, अलोकप्रिय बनने के लिए उतारा नहीं था। आज अखिलेश इतने लोकप्रिय हो गए कि उनकी पार्टी में उनके साथ कोई खड़ा नहीं है, जो उनके अपने बहुत करीबी हैं वो भी सब अखिलेश की तरफ खड़े हैं और कह रहे हैं कि अखिलेश सही हैं, आप गलत हैं नेताजी। देखिए, क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, ये दिनकर की बड़ी फेमस लाइन है, उसको क्या जो दंतहीन विश्वहित विनीत सरल हो। तो आज जो बच गए हैं वे दंतहीन हुए हैं।
ये पार्टी अब मुलायम सिंह यादव की पार्टी है या ये अखिलेश यादव की पार्टी है?
अतीत की विशेषता यह है कि वो वर्तमान को जन्म दे और परिदृश्य में चला जाए। आप नहीं जाएंगे तो वक्त और समय और समीकरण आपको परिदृश्य में डाल देंगे।
हम सीधे चल रहे हैं लखनऊ, जहां के हमारे संवाददाता नितिन श्रीवास्तव मौजूद हैं। नितिन, जैसा कि आपने सुना, रामकृपाल सिंह कह रहे थे कि पार्टी में जो है अब मुखिया जो है पार्टी के, वो अखिलेश यादव हैं। ये बताइए कि स्थानीय अखबारों पर आप नजर डाल चुके हैं, अखबार क्या कह रहे हैं वहां के? नितिन
साहब, अखबार भी जो है वो इसी पहली बात तो दो चीजों पर अखबारों का यहाँ पर आज ज्यादा रुझान है, फोकस है। सबसे पहला तो इस बात पर है कि जो यू टर्न सा लिया है समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने, मिसाल के तौर पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिखा है कि ड्रामेटिक यू टर्न, वाई मुलायम सिंह यादव वॉज फोर्स टू रिवोक एक्सपल्शन ऑफ अखिलेश यादव। और टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस पर बात किया है और लगभग सभी अखबार इस बात को लेकर एक मत लग रहे हैं कि दरअसल जो शो ऑफ स्ट्रेंथ हुआ उसमें ये हुआ कि करीब 229 जो पार्टी एमएलए थे उनमें से 200 के करीब अखिलेश यादव के समर्थन में कल यानी शनिवार की सुबह उनके कालिदास मार्ग के रेजिडेंस पर पहुंच गए और उसके बाद से शायद मुलायम सिंह यादव और उनके भाई शिवपाल यादव को एक तरह से एक झटका लगा, उनको धक्का लगा। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान टाइम्स की जो हेडलाइन है यहाँ पर वो भी कुछ ऐसी है, कहते हैं एमएसवाई यू टर्न एज सपोर्ट फॉर अखिलेश स्वेल्स। और अखबार दो और चीजों पर बात करता है। अखबार कहता है कि आजम खां जो बहुत कद्दावर मुस्लिम नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वेस्टर्न यूपी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, उन्होंने खास तौर पर इंटरवीन किया मुलायम सिंह यादव के पास जाकर और अखबार के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है, एक बहुत बड़ा तबका है मुस्लिम वोट बैंक का भी जिसने समाजवादी पार्टी को इलेक्शन में जिताया है। तो इसी तरह की सुर्खियां हैं। अमर उजाला में कुछ इस तरह की खबर है कि ट्विटर पर भी जो चाचा से कहीं आगे हैं चीफ मिनिस्टर अखिलेश। दैनिक जागरण ने भी अपनी जो हेडलाइन दी होगी, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश ने दिखाई ताकत। और शनिवार को या के बाद आज रविवार को लखनऊ में जो एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया हुआ है, जिसको पहले इमरजेंसी सम्मेलन कहा गया था, रामगोपाल यादव ने बुलाया था, अखिलेश यादव ने एक शो ऑफ स्ट्रेंथ की बात कही थी, वो बदस्तूर जारी रहेगा, वो हो रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी अखबार और सभी विश्लेषक इस बात को मान रहे हैं कि अखिलेश यादव इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर पार्टी में उभर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें वहाँ से रिपोर्टें भेजते रहिए और नज़र बनाए रखिए, शुक्रिया। और अब सुनें उर्दू अखबारों की समीक्षा, तैयार किया है इकबाल अहमद ने और सुना रहे हैं प्रभात पांडे।
भारत और पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की बात की जाए तो पाकिस्तानी अखबारों में पनामा पेपर्स, नए सेना प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की बरसी से जुड़ी खबरें छाई रहीं। भारतीय अखबारों में नोटबंदी से जुड़ी खबरों के अलावा उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की आपसी कलह अखबारों में छाए रहे। पहले बात पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की। पाकिस्तान ने भारत पर उसके अंदरूनी मामलों में दखल देने और चरमपंथी गतिविधियों में शामिल होने के एक बार फिर से आरोप लगाए हैं। रोजनामा खबरें ने सुर्खी लगाई है, पाकिस्तान में भारतीय हस्तक्षेप के सबूत अमरीका को भिजवा दिए हैं। अखबार के अनुसार पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान में कथित भारतीय हस्तक्षेप पर एक डॉजियर तैयार किया है जिसे अमरीका को भेज दिया गया है। पाकिस्तान सेना के नए प्रमुख जनरल जावेद कमर बाजवा के बलूचिस्तान दौरे पर भी कई अखबारों ने लिखा है। रोजनामा नवा ए वक्त ने सेना प्रमुख के बयान के हवाले से सुर्खी लगाई है, दुश्मन बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डाल रहे हैं। अखबार के अनुसार सेना प्रमुख ने कहा है कि बलूचिस्तान के नौजवान देश की सुरक्षा में किसी से पीछे नहीं हैं। उन्होंने भारत का नाम लिए बगैर कहा कि पड़ोसी देश साजिश रच रहा है, इसलिए साजिश के शिकार नासमझ नौजवानों के लिए दरवाजे हमेशा से खुले हैं। भ्रष्टाचार से जुड़े पनामा पेपर्स लीक्स मामले अभी भी पाकिस्तानी अखबारों में सुर्खियां बटोर रहे हैं। रोजनामा दुनिया के अनुसार तहरीक ए इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सह अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की सरपरस्ती में विपक्षी पार्टियां पनामा लीक्स मामले में एक साथ आ सकती हैं। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की 9वीं बरसी पर पीपीपी ने एक जलसा आयोजित किया था जिसे आसिफ अली जरदारी ने संबोधित किया था। कई अखबारों ने इसे पहले पन्ने पर जगह दी है। रोजनामा दुनिया ने सुर्खी लगाई है, कुर्सी नहीं खींचना चाहते, संसद में जाकर सबक सिखाएंगे। भारत से छपने वाले उर्दू अखबारों की बात करते हैं। नोटबंदी का मामला तो छाया ही रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में यादव परिवार का अंतर्कलह भी अखबारों की सुर्खियां बटोरने में कामयाब रहा। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को अखबार जदीद खबर ने सुर्खी लगाई है। अखबार लिखता है, हम तो चूहिया ही पकड़ना चाहते थे। दरअसल पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने नोटबंदी को असफल करार देते हुए कहा था कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मोदी ने चिदंबरम के इसी बयान पर चुटकी लेते हुए कहा था कि ये चूहिया ही सब कुछ चट कर जाती थी। उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी में चल रही उठापटक भी सारे अखबारों में छाई रही। रोजनामा सहाफत ने सुर्खी लगाई है, बेटे और भाई पर मुलायम हुए नेताजी। रोजनामा इंकलाब ने सुर्खी लगाई है, यूपी की सियासत में भूचाल, अखिलेश पार्टी से बर्खास्त। जबकि राष्ट्रीय सहारा ने सुर्खी लगाई है, समाजवादी पार्टी में दंगल।
ये थे प्रभात पांडे, इस रिपोर्ट को, इस विश्लेषण को तैयार किया था उर्दू अखबारों के इकबाल अहमद ने। और अब हम मैं ये बताऊं कि जौ से जो मादक ड्रिंक बनाया जाता है उसको बियर कहा जाता है। अंगूरों में अगर खमीर उठाकर बनाया जाए ड्रिंक तो उसको वाइन, या डिस्टिल्ड प्रोसेस से बनने वाले जो ड्रिंक होते हैं उनको विस्की, या भारतीय बोलचाल की भाषा में शराब कहते हैं। लेकिन अल्कोहल के कई दूसरे प्रकार भी हैं जो इन ड्रिंक्स को इस तरह से बांटने के बाद भी बचे रह जाते हैं, जैसे सेब और नाशपाती से बनने वाली साइडर या फिर चावल से बनने वाली सेक ड्रिंक। इन ड्रिंक्स की मौजूदगी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दर्ज किया हुआ है। और अब आइए भारत हमारे पन्ने bbchindi.com पर, और अब ये जानिए कि भारत में कितनी और किस किस्म की शराबें पी जाती हैं, लोग कौन कौन सी शराब पीते हैं। जैसे चारे से बनी बियर को भी अन ड्रिंक्स की श्रेणी में रखा जा सकता है। चारा एक किस्म का अनाज है जिसकी पैदावार गर्म मौसम में बेहतर ढंग से हो पाती है, और इस वजह से सहारा के आसपास के अफ्रीकी इलाके में इसका सेवन करने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। जो कि भारत के रहने वाले हैं वो ये भी जानेंगे कि जैसे और भी तरह की जो देसी शराब बनाई जाती है यहाँ, जैसे चावल से भी बनाई जाती है जो कई आदिवासी इलाकों में लोग बनाते हैं, इसी तरह हाइब्रिड डिस्टिलेशन से बनने वाली वाइन पोर्ट को भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अन्य ड्रिंक्स की श्रेणी में रखा है। साथ साथ अब ये कैलकुलेटर जहां पे आप ये जान सकते हैं, एक कैलकुलेटर है जिसके जरिए तुलनात्मक नतीजे दिखाए जा सकते हैं जो दिखाते हैं कि किस देश में किस किस्म की अल्कोहल ड्रिंक का चलन सबसे ज़्यादा है। इसमें WHO के आंकड़ों को दिखाया गया है जिसमें 15 वर्ष से ज़्यादा उम्र के ड्रिंक पीने वाले पुरुषों और महिलाओं को आधार बनाया गया और उसी आधार पर इनका विश्लेषण किया गया। WHO ने अपने आंकड़ों में माना है कि बियर की एक छोटी बोतल में 5%, वाइन में आमतौर पर 12% और स्पिरिट में 40% तक अल्कोहल होता है, यानी कि शराब होता है। और अब सुनेंगे एक बार खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। दुनिया भर के एक से बढ़कर एक देसी विदेशी खिलाड़ियों की मौजूदगी के बीच आज से भारत में प्रीमियर बैडमिंटन लीग शुरू होने जा रही है जिसमें 6 टीमें अपना दमखम दिखाएंगी। इनमें शामिल दिल्ली का दारोमदार भारत के सिरिल वर्मा, ज्वाला गुट्टा और आकर्षी कश्यप के अलावा डेनमार्क के यानो योर्गेंसन और थाईलैंड की नित चावोन जिंदापोन पर रहेगा। हैदराबाद हंटर्स में समीर वर्मा, जे मेघना और बी साई परिणीत के अलावा स्टार खिलाड़ी स्पेन की कैरोलिना मारिन भी शामिल हैं जिन्होंने रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। बेंगलुरु ब्लास्टर्स में भारत के सौरभ वर्मा के अलावा डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन और थाईलैंड के बूनसाक पोंसाना शामिल हैं। चेन्नई स्मैशर्स में रियो ओलंपिक के रजत पदक विजेता भारत की पीवी सिंधु और पी कश्यप के अलावा इंडोनेशिया के टॉमी सुगियार्तो और थाईलैंड के तानुंगसाक सीन बोम बुनसुख स्टार खिलाड़ी हैं। मुंबई रॉकेट्स में HS प्रणय, अजय जयराम के अलावा उरिया के ली युंग डेई शामिल हैं। छठी और अंतिम अवध वॉरियर्स में लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता भारत की साइना नेहवाल और के श्रीकांत के अलावा इंडोनेशिया के गो शेम और हांगकांग की विंसेंट वांग विंग की शामिल हैं। हालांकि साइना नेहवाल के फिटनेस पर सबकी नजर रहेगी लेकिन पूर्व एशियन चैंपियन दिनेश खन्ना मानते हैं कि साइना पार पालेगी।
अभी वो जो टूर्नामेंट खेली उनमें उनकी परफॉर्मेंस मैं कहूंगा मीडियम लेवल की रही, तो मैं समझता हूं कि ये जो 11 पॉइंट का फॉर्मेट है इसमें साइना नेहवाल को डेफिनेटली एडवांटेज होगा, उनसे हमें अच्छी परफॉर्मेंस की मैं समझता हूं उम्मीद करनी चाहिए।
उधर न्यूजीलैंड ने कल नेल्सन में खेले गए तीसरे और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बांग्लादेश को 8 विकेट से करारी मात दी। न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 237 रनों का लक्ष्य था जो उसने कप्तान केन विलियमसन के नाबाद 95 और नील ब्रूम के 97 रन की मदद से 41.2 ओवर में केवल 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने 32 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इससे पहले बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 236 रन बनाए। बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल ने 59, इमरुल कैस ने 44 और नूरुल हसन ने भी 44 रन बनाए। न्यूजीलैंड के मैट हेनरी ने 53 रन देकर 2 और मिचेल सेंटनर ने 38 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। तो इस तरह से न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की सीरीज एक तरफा रूप से 3-0 से अपने नाम की।
कार्यक्रम खत्म होने को है और लेकिन एक बार फिर से प्रभात पांडे खबरों की अपडेट के साथ मौजूद हैं स्टूडियो में।
BBC समाचार। नए साल की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में कई ऐलान किए और साथ ही दावा किया कि देश ने कंधे से कंधा मिलाकर उनके नोटबंदी के फैसले का समर्थन किया। तुर्की के इस्तांबुल में नए साल के जश्न के दौरान एक नाइट क्लब में फायरिंग हुई है जिसमें 35 लोगों की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक हमलावर सेंटा की ड्रेस पहनकर रेना नाम के एक नाइट क्लब में दाखिल हुआ और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। TV फुटेज में इस क्लब के बाहर पुलिस की गाड़ियों और एम्बुलेंस को देखा जा सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने देश में बढ़ते राष्ट्रवाद पर चिंता जाहिर की और उसे फ्रांस के लिए खतरा बताया। उन्होंने नए साल के मौके पर फ्रांस की जनता को संबोधित करते हुए ऐसा कहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सीरिया में लड़ाई रोकने के रूस और तुर्की के प्रयासों का स्वागत किया है और कहा है कि वो युद्धग्रस्त सीरिया को संकट से उबारने के लिए वहां राजनीतिक प्रक्रिया का समर्थन करती है। ताइवान की राष्ट्रपति साई यिंग वेन ने कहा है कि चीन उसको धमकी देने के और डराने के अपने पुराने तौर तरीकों की तरफ लौट रहा है। BBC समाचार।
कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला था देवाशीष कुमार ने। रेडियो पर अगली मुलाकात होगी शाम के 7:30 बजे, लेकिन तब तक नज़रें बनाए रखिए bbchindi.com पर। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।